पंजाबी उपन्यास में दलित जीवन का यथार्थ। पिछले कुछ वर्षों से दलित जीवन भारतीय समाज के केंद्र में आ गया है। इसके कारण चाहे राजनीतिक हैं, किंतु इसका प्रभाव मानव जीवन के सभी पक्षों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पर पड़ा है। पंजाबी समाज और पंजाब का दलित अंग संबंधी कुछ विशिष्टताएं हैं। यह समझा जाता है कि समाज के अन्य अंगों की तुलना में पंजाब की दलित संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। पंजाब का दोआब क्षेत्र इस संबंध में अधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में जूता बनाने व चमड़ा साफ करने का काम होता है और दलितों में से चमार समुदाय इस काम में हिस्सा लेता है। इस स्थिति को हिंदी उपन्यासकार जगदीश चंद्र ने अपने उपन्यास त्रयी धरती धन अपना, नरक कुंड में वास व जमीन अपनी तो थी द्वारा चित्रित कर उभार दिया है। दोआब क्षेत्र ही आदि धर्म आंदोलन का ही केंद्र रहा है और दलितों द्वारा ईसाई धर्म में धर्मांतरण भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ है। पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया व अब बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार भी इसी क्षेत्र में है। बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य कुछ प्रदेशों के राज्यों के स्तर पर जातीय घृणा का शिकार प्रांत नहीं है। यद्यपि पंजाब में महाराष्ट्र की तरह महात्मा फूले या डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व जैसा जन आंदोलन तो नहीं हुआ, तथापि सिख धर्म और सूफी कवियों के प्रभाव के कारण पंजाब में अन्य राज्यों की तुलना में उदार मानवीय व्यवहार पल्लवित हुआ व पंजाबी समाज कुछ हद तक कम जातिवादी समाज बना। किंतु इस जरा से उदार माहौल से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पंजाब में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर दलितों का उत्पीड़न नहीं होता। वास्तव में सिख धर्म की जाति रहित नैतिकता के बावजूद सिखों में भी अंतर जातीय विवाह बहुत कम संख्या में होते हैं। इसी प्रकार जमीन से संबंधित मामलों में, क्योंकि पंजाब में अधिकांश दलित जाट किसानों के खेत मजदूर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों का अक्सर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और कई बार तो यह बहिष्कार इतना अमानवीय होता है कि खेतों में दलितों का हगनामूतना तक रोक दिया जाता है। जो युवक युवतियां अंतर जातीय विवाह करते हैं, कई बार उनकी हत्याएं तक कर दी जाती हैं। क्योंकि पंजाब के बौद्धिक वर्गों में सिख धर्म और सूफी परंपरा के प्रभाव में उदार चिंतन का माहौल विकसित हुआ, इसलिए पंजाबी साहित्य प्रारंभ से ही सामान्यतः मानवतावादी रहा है। मध्यकालीन व आधुनिक पंजाबी साहित्य में भी मानवतावाद की परंपरा चलती रही। पंजाबी उपन्यास 20वीं सदी में आरंभ हुआ व विधा के रूप में उपन्यास को ग्रामीण जीवन के यथार्थ का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि समझा जाता है, क्योंकि पंजाब की पूरी आर्थिकता अभी भी खेती से जुड़ी है और उद्योग का प्रभाव बहुत कमजोर है। यद्यपि उपन्यास पूंजीवाद का साहित्यिक रूप है और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने स्थानीय सामंतवाद से गठजोड़ कर पूंजीवाद को बहुत विकृत रूप में यहाँ विकसित किया। नतीजन भारतीय समाज को सामंतवाद व पूंजीवाद के सबसे खराब रूपों ने मिलकर एक जलता हुआ नरक बना दिया है और भारतीय समाज में पूंजीवाद के स्वस्थ पहलू कभी पहुँचे ही नहीं। इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपन्यास का विकास भी बाधाओं के साथ ही हुआ है और अब भारतीय यथार्थ इतना जटिल हो गया है कि भारतीय उपन्यासकारों के लिए एक ऐसी चुनौती उत्पन्न हो गई है कि वे अपने सृजनात्मक लेखन में इस यथार्थ को इस प्रकार चित्रित करें कि उनके चित्रण से पाठकों को रोशनी मिले। पंजाबी उपन्यास में आरंभ से ही दलित जीवन को किसी न किसी दलित चरित्र के माध्यम से सामान्य रूप से चित्रित किया गया है। नानक सिंह, करतार सिंह दुग्गल, सुरिंदर सिंह नरूला, जसवंत सिंह कंवल आदि उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में दलित चरित्रों को बहुत सहानुभूति से, यहाँ तक कि कई बार आदर्शवादी ढंग से भी चित्रित किया है। किंतु ये उपन्यासकार कभी भी दलित मन की तह तक नहीं पहुँच सके और न ही यह जानने में सफल हो सके कि दलितों को गाँव की मुख्य बस्तियों से परे कच्चे घरों में रहते हुए या शहरों कस्बों में अछूत बनकर रहते हुए कैसी भावनात्मक चोट लगती है। 7वें दशक में ही पंजाबी उपन्यासकारों ने दलित जीवन पर निकटता से ध्यान दिया और फिर 1964 में गुरदयाल सिंह के मढ़ी दा दीवा उपन्यास के प्रकाशन से एक सनसनी सी फैल गई। पंजाब के मालवा क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल टीचर गुरदयाल सिंह ने 30 वर्ष की उम्र में यह उपन्यास लिखकर एक नया इतिहास रच दिया। उस समय के सभी पंजाबी आलोचकों ने लगभग एक स्वर में मढ़ी दा दीवा को एक मास्टरपीस माना। इन आलोचकों में डॉक्टर अतर सिंह का स्थान बहुत ऊंचा था। बाद में पंजाबी के सभी प्रमुख आलोचकों ने इस उपन्यास पर लेख लिखे। संत सिंह शेखों व प्रोफेसर किशन सिंह से लेकर जोगिंदर सिंह राही, सतिंदर सिंह नूर या TR विनोद, अनेक विद्वानों ने मढ़ीदा दीवा की शानदार उपलब्धियों को रेखांकित किया। 1967 में लेखक ने स्वयं इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया। हिंदी में छपने पर प्रोफेसर नामोर सिंह, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान व श्री विष्णु प्रभाकर आदि बड़े हिंदी लेखकों ने इसे एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय उपन्यास माना। मतलब प्रकाशन के पाँच छः वर्ष में ही मणि द दीवा पंजाबी की ही नहीं वरन भारत की क्लासिकल रचना बन गई। यद्यपि यह रचना अब तक न केवल गुरदयाल सिंह की ही संभवतः पूरी पंजाबी उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है, तथापि तो गुरदयाल सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी बात के उपन्यास की कृति अर्ध चांदनी रात पर 1975 में ही मिला। हिंदी में वीएस पाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी श्रेष्ठ रचना झूठा सच पर न मिलकर बात की रचना तेरी मेरी उसकी बात पर 1976 में मिला। यह इतर प्रसंग है। पंजाबी ग्रामीण जीवन को बिना किसी रोमांस के अत्यंत सघन यथार्थ रूप में प्रस्तुति के कारण मणि द दीवा का दर्जा अब वही है जो हिंदी में गोदान या मेला आंचल का है। यह पंजाब के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण परिदृश्य का नग्न यथार्थ है जिसमें दलित नायक जगसीर भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से सर्वाधिक उत्पीड़ित व्यक्ति है। पहली बार किसी पंजाबी उपन्यासकार ने दलित नायक व नायिका को साहित्य में इतनी ऊंची हस्ती प्रदान की है। मणि द दीवा में पंजाब के जटिल सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक ढांचे में जागीरदार व खेत के रिश्ते के यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है। धर्म सिंह और उसका स्वर्गीय पिता अच्छे जागीरदार के रूप में आदर्श मालिक का उदाहरण है। ढोला अजगसीर आदर्श सेवक है। मालिक अपने दलित पृष्ठभूमि से आने वाले सेवक से भाई जैसा व्यवहार करते हैं। उपन्यास में एक जगह धर्म सिंह का पिता अपने सेवक भाई के नाम पर 4 बीघा जमीन कर देने का वायदा भी करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। हालांकि ठोला और जगसीर को उसने इस जमीन को रोपने बीजने व काटने आदि की इजाजत अपनी जमीन की तरह दे रखी थी। धर्म सिंह का पुत्र बंता और धर्म सिंह धर्म की पत्नी धन्नो इस सामंतवाद का दूसरा रूप है। यदि धर्म सिंह में करुणा है तो धन्नो और बंता असली गुंडे हैं। वे न सिर्फ जगसीर से ही उसका दर्जा उनकी निगाह में नौकर से बढ़कर कुछ नहीं, वरन धर्म सिंह जो कि जमीन का असली मालिक और जागीरदार है से भी दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि धर्म सिंह बूढ़ा हो रहा है और वह जगसीर को उसकी माँ की मृत्यु पर सांत्वना देने की कोशिश करता है। वह उसकी माँ के अंतिम रस्मों व उससे संबंधित सामाजिक रस्मों का खर्चा जगसीर को देता है। इस पर उसकी पत्नी और बेटा इतने भड़क जाते हैं कि उसे घर से बाहर पशुघर में भेज देते हैं। सिर्फ उसकी पौत्री को उससे कुछ सहानुभूति है। वास्तव में धन्नो और बनता एक कुत्सित सामंती व्यवस्था के असली और क्रूर रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस व्यवस्था को विकृत पूंजीवादी व्यवस्था की भी स्वीकृति है। सो उनके मन में ठोला की कब्र या उसकी स्मृति में लगाए टहरी वृक्ष की क्या इज्जत हो सकती है। वे ढोला को की मड़ी गिरा देते हैं, टाहली को लकड़ी के ठेकेदार को बेच देते हैं और जगसीर की बोई फसल काट लेते हैं। इस प्रकार वे धर्म सिंह और जगसीर को तथाकथित धर्म भाई संबंध की असलियत का एहसास करवा देते हैं। धर्म सिंह भी यदि सामंती जीवन मूल्यों के अनुसार नहीं चलता तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी का पति या पिता होने की रियायत उसे नहीं मिलेगी, लेकिन धर्म सिंह ने अपने संपत्ति अधिकारों का इस्तेमाल न करके भी अपने लिए इस दुर्व्यवहार को निमंत्रण दिया है। वह तो अपनी पत्नी और पुत्र के प्रति दयालु होना चाहता है, किंतु उसके पत्नी और पुत्र के मन में उसके प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है। अतः संपत्ति के असली मालिक को अपने निकटतम संबंधियों की शैतानी साजिशों का प्रतिरोध न करने के कारण घर से बाहर फेंक दिया जाता है। जगसीर की पीड़ा तो एक अन्य स्तर पर और भी अधिक है। उसका विवाह नहीं हो पाता, हालांकि उसकी माँ ने उसके लिए बेहद कोशिशें की। एक तो वह अत्यधिक गरीब है, दूसरे वह दलितों में जाति बाहर है, क्योंकि उसकी माँ जो सासी कबीले से थी ने अपने परिवार और समुदाय की इच्छा के विपरीत अपनी मर्जी से जगसीर के पिता से शादी की थी। जगसीर का पिता जगसीर के लिए पत्नी खरीदने को तैयार नहीं है, सो जगसीर अनब्याहा ही रह जाता है, किंतु वह अपने हजाम दोस्त निक्के की पत्नी भानी से प्रेम करने लगता है। सुंदर व लंबी स्त्री भानी भी जगसीर को चाहने लगती है, किंतु उनका प्रेम अंत तक प्लेटोनिक ही बना रहता है और वे कभी एक दूसरे का स्पर्श तक नहीं करते। यद्यपि भानी ने जगसीर को एक आध बार अपनी ओर आकर्षित किया, किंतु वह रिश्तों की पवित्रता कहकर बसता ही रहा। जगसीर की पवित्रता व धर्म सिंह की दयालुता दोनों ही सामंती मूल्य है। जगसीर संपूर्णतः तृप्त आदमी के रूप में मर जाता है, न उसे जमीन मिलती है और न ही औरत। सिर्फ भानी उसकी मढ़ी की पूजा करती है, वह वहां दिया जलाती है। प्रकृति ने पशु पक्षियों तक तो सेक्स के स्तर पर एक दूसरे को संतुष्ट करने की व्यवस्था की है। यह मानव समाज ही है जिसने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मनुष्य अपनी सर्वाधिक सहज प्रवृत्ति सेक्स की भी पूर्ति नहीं कर पाता। हालांकि मनुष्य के लिए पूर्ति पारस्परिक प्रेम के सांस्कृतिक रास्ते के जरिए होनी होती है, किंतु मानव समाज के गरीबों और उपेक्षितों को तो इस सांस्कृतिक मार्ग का भी निषेध है। अतः वे आधे भूखे व प्यार विहीन जीते हैं। इसीलिए मणि द दीवा में एक चरित्र बार बार कहता है, मनुष्य तेरी 10 देह हैं, तुमने एक ही जी है, बाकी कहाँ गई। गोदयाल सिंह ने पंजाब के दलित जीवन के महान दुखांत को अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। कुल 140 पृष्ठ के इस उपन्यास के प्रभाव को भाषा शैली ने और भी बढ़ा दिया है। हालांकि इस उपन्यास के बाद 9 और उपन्यास गोदयाल सिंह ने लिखे, जिनमें उनका अंतिम प्रकाशित उपन्यास परसा भी शामिल है, जिस पर 1999 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन मणिदा दीवा के कलात्मक स्तर पर वे फिर कभी नहीं पहुंच सके। छपने के लगभग 4 दशक बाद भी अन्य कोई पंजाबी उपन्यासकार मणिदा दीवा के स्तर तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया, और ऐसा लगता है कि अगले कई दशकों तक मणिदा दीवा को ही अब तक के सर्वश्रेष्ठ पंजाबी उपन्यास का दर्जा हासिल रहेगा। उपन्यास की प्रमुख शक्ति पंजाब के मालवा क्षेत्र के दलित जीवन के यथार्थ चित्रण में ही निहित है। मशालची दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण पंजाबी उपन्यास है जिसमें ग्रामीण पंजाब और अन्य जगहों का दलित जीवन केंद्र में आया है। 1986 के आरंभ में छपे स्वर्गीय डॉक्टर गुरचरण सिंह राव के इस उपन्यास के पंजाबी आलोचकों ने उपेक्षा की। असमय लेखक के ध्यान के कारण उपन्यास का वितरण भी नहीं हो पाया, क्योंकि उपन्यास स्वयं लेखक ने प्रकाशित भी किया था। फिर भी पंजाबी के दो महत्वपूर्ण आलोचकों स्वर्गीय संत सिंह सेखों व डॉक्टर रवीर सिंह सिरजणा ने इस उपन्यास की ओर ध्यान केंद्रित किया। संत सिंह सेखों ने तो उपन्यास की भूमिका भी लिखी, क्योंकि लेखक का संबंध सेखों के अपने गाँव से ही था। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने अपनी त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका सृजना में उपन्यास पर समीक्षात्मक लेख लिखा, परंतु इसके बाद उपन्यास की चर्चा समाप्त हो गई। इसका एक कारण उपन्यास की अनुपलब्धता थी। लेखक के ध्यान के बाद उपन्यास उनके घर में ही दबा रहा। अब लेखकों के परिवारजनों ने उपन्यास कुछ प्रतियां विद्वानों को वितरित की हैं, तथा अब आशा है कि इस उपन्यास का वैसा ध्यान दिया जाएगा जैसा उपन्यास को प्रकाशन के अवसर पर ही दिया जाना चाहिए था। अब दलित साहित्य की प्रवृत्ति स्थापित हो जाने के बाद इस उपन्यास को दलित साहित्य की परंपरा में प्रमुख स्थान हासिल होना चाहिए। इस उपन्यास के रचयिता डॉक्टर गुरुवचन सिंह राव का संबंध दलित पृष्ठभूमि से था, और वे अपने सख्त परिश्रम से डॉक्टर बने। बाद में वे सेना में कैप्टन रहे, और वहां से रिटायर होकर उन्होंने लुधियाना के नजदीक मुल्लापुर दाखा में अपना अस्पताल स्थापित किया। सृजनात्मक साहित्य की ओर उनकी रुचि विकसित हुई, और 1974 से 78 में उनके दो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। एक अन्य उपन्यास खारी गंगा व एक और कहानी संग्रह की रचना भी उन्होंने की, किंतु उनके असमय देहांत के कारण यह कृतियां छप नहीं पाई। गुरुसर सुधार कॉलेज में डॉक्टर राव संत सिंह सेखों के छात्र थे, और उन्होंने 1964 में अमृतसर से MBBS की डिग्री प्राप्त की। 5 साल वे सेना में रहे। डॉक्टर राव ने इस उपन्यास की प्रस्तावना 1986 में लिखी। उपन्यास की रचना 84-85 वर्षों में हुई, और उपन्यासकार नक्सलवादी आंदोलन का उभार देखा, और उसका चित्र भी परोक्ष रूप से उपन्यास में मिलता है। दलित वर्ग में डॉक्टर राव का संबंध चमार समुदाय से था, और उपन्यास द्वारा उन्होंने चमारों व बनियों की एकता के बजाय चमारों व जाटों की एकता का संदेश दिया है। उपन्यास का उनका प्रमुख चरित्र कटार सिंह या कट्टू का जन्म चमार परिवार में हुआ। कट्टू का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय 1939 में हुआ था। उपन्यास में 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का भी जिक्र है, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए दुआ आंदोलनों का फर्क भी दिखाया है। भारतीय नेताओं का बेचान आंदोलन व करतार सिंह सराभा भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारियों का जानदार आंदोलन। उपन्यास के आरंभ से ही स्पष्ट है कि उपन्यासकार राजनीतिक स्तर पर सचेत लेखक है। उपन्यास की शक्ति पहले 100 पृष्ठों में है, जहां पर ग्रामीण पंजाब के दलित जीवन का अत्यंत प्रभावशाली प्रामाणिक चित्रण हुआ है। दलितों में अभावों का जीवन, गांव के जमींदारों की क्रूरता, बेजमीन या कम जमीन वाले किसान गरीब किसानों की स्थिति, समाज में अछूतों के साथ अपमानजनक व्यवहार, ग्रामीण जीवन के इन सभी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पक्षों को उपन्यास में विस्तार से चित्रित किया गया है, और इसमें अत्यंत यथार्थ भाषा शैली का प्रयोग भी हुआ है। नित्य प्रति जीवन के चित्रण में उपन्यासकार ने ग्रामीण लोगों में व्यवहारिक भाषा का भाषाई रंग पुनः सृजित करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने जनजीवन में प्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों को भी मार्मिक रूप से चित्रित किया है। कट्टू के माँ बाप अपने आप में तुलना के पात्र हैं। भगतू जमीन जागीरदारों का मानसिक गुलाम है, जबकि बचनी पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मसम्मान रखने वाली स्त्री है। वह अपने पुत्र कट्टू को स्कूल भेजने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, ताकि वह जागीरदारों के पंजों से बाहर आकर सदियों की गुलामी से मुक्त हो सके। भगतू उसकी योजनाओं से सहमत नहीं है, वह तो कट्टू को छोटी उम्र में ही जागीरदारों की गुलामी में बांध देना चाहता है। बचनी भारत की स्वतंत्रता के शुरू के दौर में कट्टू को स्कूल भेजने में सफल हो जाती है। स्कूल में कट्टू को हर तरह के अपमान झेलने पड़ते हैं, उसे अलग बिठाया जाता है, दूसरे बच्चों के साथ वह खा पी नहीं सकता। मामूली सी बात पर उसके अध्यापकों व कई बार कथित उच्च जाति छात्रों द्वारा उसकी धुनाई कर दी जाती है, फिर भी वह दिल नहीं छोड़ता। अपनी माँ व अपने गरीब जाट दोस्त शमिंदर के भावात्मक समर्थन से वह पढ़ाई जारी रखता है। हर वर्ष वह सर्वश्रेष्ठ छात्र बनकर निकलता है। वह 10वीं श्रेणी तक पहुंच जाता है और एक वर्ष बाद उसके व उसके परिवार के जीवन को बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। किंतु दलित समुदाय के लिए जीवन के रास्ते इतने सीधे नहीं हैं, अतः कट्टू गांव के जागीरदार के पौत्र द्वारा किए जा रहे अपमान को न झेलकर उसे बदले में पीट देता है और उसकी प्रतिक्रिया में पुलिस उसे यातनाएं देकर लगभग मृत्यु प्राय कर देती है और मरने के लिए रेलगाड़ी की पटरी पर फेंक देती है। यह तो रेलवे के गैंगमैन को ही दया आ जाती है जो उसे बचा लेता है। उसका पिता इस आघात से ही मर जाता है और माँ पागल हो जाती है। गैंगमैन उसे संभालता, उसका इलाज कर पुनः स्वस्थ बनाता है और बाद में उसकी माँ के गांव छोड़ आता है। वहीं बाद में उसकी माँ भी पहुँच जाती है। वो अपने नाना नानी के साथ रहता है, मजदूरी करता है, गाँव के दलित युवकों का एक क्लब बनाकर खूब अध्ययन भी करता है। लेकिन एक बार फिर किट्टू किसी पाखंडी धार्मिक प्रचारक को पीट कर मुसीबत में फंस जाता है तथा भाग कर उत्तर प्रदेश चला जाता है, जहाँ कई वर्ष तक वह डाकिया बनकर रहता है। यहीं पर उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त शमिंदर सिंह से होती है, जो अब ग्रामीण गरीबों का संगठनकर्ता बन गया है, किंतु वह नक्सलवादी हिंसक गतिविधियों के बजाय जन संगठनों व जन आंदोलनों में आस्था रखता है। कट्टू का एक दोस्त नक्सलवादी बन गया है व कट्टू उससे प्रभावित है, किंतु शमिंदर के दखल से वह अपने मामा घर आ जाता है। उसकी माँ का देहांत हो गया, वह भी गाँव के गरीबों को शोषण के खिलाफ संगठित करने लगता है और वह कांग्रेस व एक अन्य जागीरदार के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहा है। उस पर चुनाव से हटने का दबाव पड़ता है, वह हटने से इनकार कर देता है और विरोधी जागीरदार द्वारा उसकी अंतिम चुनाव सभा में हत्या कर दी जाती है। यही उपन्यास खत्म होता है। उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद के भारत की विशेषता और 1977 तक की बड़ी सशक्त व यथार्थ प्रस्तुति हुई है, किंतु पहले 100 पृष्ठों के बाद कलात्मक कमजोरी के कारण उपन्यास की पकड़ ढीली पड़ जाती है। पूरा उपन्यास करीब 325 पृष्ठों का है। इस उपन्यास की शक्ति इसमें चित्रित ग्रामीण व दलित जीवन के यथार्थ में है और इसकी कमजोरी इसके अति राजनीतिकरण व किसान या दलित नेताओं के लंबे भाषणों में है, जो पाठकों का कहानी से ध्यान हटा देते हैं। अपने प्रमुख चरित्र की जागीरदारों के गुंडों के हाथों हत्या करवाकर लेखक ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के यथार्थ का उद्घाटन किया है। इस व्यवस्था में दलितों को कागजों में तो अधिकार मिले हैं, किंतु व्यवहार में वे राज्य दमन के सभी रूपों में उत्पीड़ित हैं, चाहे यह दमन सीधे जागीरदारों द्वारा किए जाएं या जागीरदारों के पक्ष में पुलिस बलों द्वारा या फिर अपने भाइयों की पिछड़ी चेतना द्वारा। उपन्यास की एक और कमजोरी उपन्यास में चमारों व जाटों की एकता का चित्रण उपन्यासकार की पूर्व नियोजित योजना है, जिसे उपन्यास में किट्टू व समिंदर के चरित्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक स्तर पर भले यह सही रणनीति हो, किंतु सृजनात्मक लेखन में राजनीतिक रणकौशल योजनाबद्ध ढंग से नहीं बनाए जाते, यह तो जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों से सहज रूप से उद्भूत होने चाहिए। स्कूल में शमिंदर व कट्टू की दोस्ती स्वाभाविक लगती है, किंतु उपन्यास के अंत में यह बनावटी व आरोपित लगती है। फिर भी इस उपन्यास संबंधित संत सिंह सेखों की टिप्पणी से सहमत होना होगा, इस उपन्यास द्वारा एक नए प्रतिभाशाली कथा लेखन के लिए वास्तविक बुनियाद डाल दी गई है। नरेंद्र गिल द्वारा रचित दास्ता दरिद्री पर प्रकाशन तिथि नहीं दी गई, किंतु यह उपन्यास 1992-93 के आसपास छपा है। यह 415 पृष्ठों का दीर्घ आकार का उपन्यास है, जिसमें न अध्याय विभाजन है, न ही विराम है, न पैराग्राफ भी कई कई पृष्ठों तक फैले हैं। उपन्यास में कथा भी नाम मात्र की है। संदर्भ 1986 के आसपास का है, जब पंजाब में सुरजीत सिंह बरनाला सरकार ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में कमांडो दस्ते भेज दिए थे व इस पर अकाली पार्टी विभाजित हो गई थी। रोपड़ जिले के जिलाधीश ने जिले में आतंकवादी हत्याओं के कारण एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। हुकमो सिंह माजरी बसपा का जिला अध्यक्ष और अधिकांशतः उसी के माध्यम से व अन्य सभी राजनीतिक दलों कांग्रेस अकाली सीपीआई सीपीआईएम नक्सली आरपीआई जनसंघ व भाजपा आदि के साथ संबंध में लेखकों ने पिछली आधी सदी की दलित राजनीति व दलित स्थिति संबंधी लंबी कथात्मक सूचनाएं दी हैं। लेखक को राजनीतिक घटनाओं की अच्छी जानकारी है और उसकी कुछ सहानुभूति वामपंथी आंदोलन से, अतः उसने भारत विभाजन संबंधी व उसके बाद पंजाब व केंद्र की राजनीतिक घटनाओं संबंधी लंबी कथा कही है। उपन्यास के अंत में शहर में शांति मार्च नहीं हो पाता, वरन कर्फ्यू लगा दिया जाता है और उपन्यास का अंत होता है। एक मीटिंग के संदर्भ में उपन्यासकार ने 400 पृष्ठों से अधिक की कथा गढ़ दी है। उपन्यास कथा को राजनीतिक कथा के साथ मिलाने की अपनी शैली के कारण दास्ता दलित दादी पढ़ने में बहुत कठिन व अरुचिकर रचना बन गई है। दलितों संबंधी प्रत्यक्ष शीर्षक वाली यह रचना उपन्यास की कथा राजनीतिक कथा के भारी दबाव के नीचे कुचली ही गई है। उपन्यास में दलित राजनीतिक उतार चढ़ाव, इसकी सांस्कृतिक परंपराओं, इसकी लोक परंपराओं, दलित मिथकीय नायकों आदि की चर्चा तो है, किंतु पंजाब के वास्तविक दलित जीवन का कोई चित्रण नहीं है। इसमें दलित नेताओं का भ्रष्टाचार, दलित राजनीतिक दलों की असफलता आदि की चर्चा तो है, किंतु लेख की सामान्य दलित जनों के उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित करने में कोई रुचि नहीं है। अतः उपन्यास सूचनाओं का भंडार होने पर भी पाठकों में कोई उत्साह नहीं जगाता। उपन्यास में बौद्धिक तत्व तो अत्यधिक मात्रा मौजूद हैं, किंतु इसमें भावात्मक तत्व बिल्कुल भी नहीं है। इसके बगैर कोई भी उपन्यास या अन्य रचना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती। राम, स्वरूप, अड़खी, मनमोहन, बाबा ओम प्रकाश, गासो आदि अन्य अनेक पंजाबी उपन्यासकारों ने भी दलित चरित्रों को केंद्र में रखकर रचनाएं की हैं, किंतु इन तीनों उपन्यासों में पंजाब का दलित जीवन पर ही ध्यान केंद्रित कर इन्हें सामाजिक जीवन का दस्तावेज बनाया गया है। इन उपन्यासों में विशेषतः पहले दो उपन्यासों में पंजाबी समाज में दलित जीवन का प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत हुआ है। यह जीवन उत्पीड़न से भरा है। हालांकि समाज के अन्य हिस्सों, गरीब, किसान, निम्न मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग आदि भी सामाजिक आर्थिक कारणों से उत्पीड़ित हैं, फिर भी दलितों का उत्पीड़न इनसे कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें सामाजिक अस्पृश्यता में भी दलित उत्पीड़ित किया जाता है। इन उपन्यासों के प्रकाशन के बाद स्थितियाँ कुछ बदली हैं, लेकिन दलितों के आत्मसम्मानपूर्ण जीने के अधिकार की लड़ाई की मंजिल अभी बहुत दूर है, और ये उपन्यास इनके संघर्ष में सृजनात्मक प्रेरणा और समर्थन का स्रोत है। दलितों के जीवन की कठिन स्थितियों के तथ्यों के सामाजिक दस्तावेजीकरण का स्रोत भी ये उपन्यास बन जाते हैं।